सातवें अध्याय आज हम पाठ करेंगे। पहले इस अध्याय का महात्मा हम पाठ करने के पश्चात हम गीता के श्लोक एक साथ मिलकर गाएंगे और उसके बाद गीता के अनुवाद हम पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं सातवें अध्याय का महात्मा बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर में, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है, उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वो धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट दिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पेखरू प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वो प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त्य धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांतों को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसको रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की जोनी से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपनों की बातें कही। उनमें से मछला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पजोनी धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्ह से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से एक भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपनों से विस्मित होकर यहां सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूं। पुत्र की ये बानी सुनकर वो सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प जोनी में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का सातवां अध्याय ही प्राणियों को जड़ा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरे मुक्ति हो जाएगी। वत्स्य, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पजोनी में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंखकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्र के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था उससे भी उसे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात सातवें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, ये तुम्हें सातवें अध्याय का महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की। तो सातवें अध्याय का महात्मा समझ में आया, सब समझ लिया, तो क्या करना है? आप पाठ करना, और हमें ऐसे पाठ करना चाहिए ताकि भगवान खुद सुन सके। इसको इस साइड ले लाओ, इस साइड घुमा दो, नहीं इसको माइक को। এদিকে তো আমার ইয়ে থাকবে, ওই দিক থেকে করো, এখান থেকে করো। অধ্যায় সাত শ্রীমৎ ভগবদ গীতা যথারূপ, ভগবৎ জ্ঞান। শ্রী ভগবান নে কহা, হে পৃথা পুত্র, আব সুনো কি তুম কিস তরহ মেরি ভাবনা সে পূর্ণ হোকর और मन को मुझ में आशक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संसंग रहित जान सकते हो। जब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कोई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त हैं, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों को साधना का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी के आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। हे पृथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हे भारत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वे सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। निस्संदेह ये सब उदारचेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले केवल देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्ख तथा अल्पों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपने अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, ये सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के दंडक से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जो जड़ा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वो वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझे परमेश्वर के को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा वास्तव यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये 7वें अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वें अध्याय से भक्ति का वर्णन शुरू हुआ। पहला 6 अध्याय में क्या हुआ? पहले 6 अध्याय में कर्म का वर्णन हुआ है, 7 से 12 तक भक्ति का और 13 से 18 तक ज्ञान का। तो भगवत भक्ति का वर्णन, कैसे हम भगवान को भक्त बन सकते हैं, इसका वर्णन अब यहां से शुरू हो रहा है। पहले ही भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरे प्रति आसक्त होकर, जोग युक्त होकर मेरे साथ संपर्क बनाते हैं, हाँ, वो निस्संदेह पूर्ण रूप से हमें जान सकते हैं। तो भगवान को जानने का तरीका क्या है? मैया शक्त मना पार्थ जोगान युंजन मदाश्रय, आश्रय मद आश्रय। मद आश्रय का मतलब, आश्रय का और एक अर्थ क्या होता है? शरण। तो भगवान के शरण में आने से ही, केवल भगवान को शरणागत होने से ही केवल हम सही रूप से भगवान को जान सकते हैं। इसके अलावा भगवान को हम कभी नहीं जान सकते। पहले भी भगवान क्या बताया अर्जुन को, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यं हि एतदुत्तम। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए इस ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहां भी उसका ही पुनरावृत्ति हो रहा है कि भगवान को जानने का उपाय क्या है। भगवान के शरणागत होकर भगवान को भक्ति करना। और इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं, अब मैं ऐसे ज्ञान तुमको दान करूंगा, ऐसे ज्ञान मैं तुमको प्रदान करूंगा जिसको जानकर और कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाएगा। ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अवशिष्यते का मतलब क्या है? अवशेष नहीं रह जाएगा, शेष नहीं रहेगा और कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसके पश्चात भगवान इस ज्ञान का दुर्लभता के बारे में कह रहे हैं। इस ज्ञान कितनी दुर्लभ है इसका वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक आदमी सिद्धि प्राप्ति के प्रयास करते हैं, और वैसे जो सिद्ध बने हैं, सिद्धि प्राप्त हो चुके हैं, उनमें से भी दुर्लभ है एक व्यक्ति जो भगवान को जानते हैं। तो आप देखो, हजारों मनुष्यों में कदाचित एक दो का सिद्धि मिलता है, वैसे हजारों सिद्धों में से कोई भी एक भगवान को शायद जान पाते हैं। इतनी दुर्लभ है, मतलब करोड़ों में से एक भगवान को जान सकते। इसके पश्चात भगवान भौतिक जगत का वर्णन कैसे किए हैं, आठ तत्वों से इस भौतिक जगत का रचना हुआ है। वो आठ तत्व क्या है? पंच महाभूत और तीन सूक्ष्म पदार्थ, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। और इसके पश्चात भगवान क्या कह रहे हैं, बल्कि इस जगत के परे और एक जगत है, और जीव भूतं जो इस भौतिक जगत को उपभोग कर रहे हैं, ये शब्द जो प्रभुपाद ये किए हैं, विदोहन कर रहा है, इस भौतिक जगत का जो विदोहन कर रहा है वो आत्मा, मतलब जो सजीव चेतन आत्मा व्यक्ति, वो लोग कहां से आए हैं, मतलब हम सब कहां से आए हैं, भगवान के परा प्रकृति से है ना। तो यहां ही असल बात है। जो मूर्ख है वो क्या बोलते हैं, आत्मा कहकर कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है, और आत्मा अगर है भी उसका उत्पत्ति भौतिक जगत से हुआ है। तो ये क्या बुद्धिमान का विचार है, आत्मा का उत्पत्ति भौतिक जगत से होता है? परंतु आत्मा के आगमन के कारण, आत्मा यहां है इसलिए भौतिक जगत का प्रकाश हुआ है। हम सब क्या, कौन है? हम सब आत्मा हैं, और हम सब यहां हैं इसलिए इस भौतिक जगत प्रकट हुए हैं। जब हम यहां से चले जाएंगे तो क्या होगा, भौतिक जगत रहेगा? भगवान एक समय हम सबको बुला लेंगे अपने पास प्रलय के समय, महाप्रलय के समय, तब कोई नहीं रहेगा यहां। तब इस भौतिक जगत का स्थिति कैसी होगी? अव्यक्त, अप्रकाश। भौतिक जगत तब रहेगा बल्कि अप्रकाश रूप में, अप्रकट रूप में रहेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। इस जगत का स्थिति कैसी है, अब पहले अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त हो जाएगा और बीच में व्यक्त हुआ, प्रकाश हुआ। और इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जगत, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, दोनों का ही धारण कौन कर रहे हैं? भगवान ही कर रहे हैं। उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। उसका उत्पत्ति भगवान से हुआ है और इसका विनाश भी भगवान में ही होगा, भौतिक जगत। और इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कि हमसे बढ़कर और कोई कई सत्य नहीं है। मत्त परतरंग नान्नत किंचित अस्ति धनंजय। मत्त परतरंग, मत्त मतलब, मत्त का मतलब है हमसे, मुझ हमसे ये है या मुझसे, मत्त मुझसे पड़े। मत्य का मतलब मुझसे, परतरंग, परतरंग मतलब इसे श्रेष्ठ, हमसे श्रेष्ठ और कुछ न अन्नत, हमसे मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे मुझके परे और कुछ नहीं है। मत्त परतरंग नान्य किंचित अस्ति धनंजय। और जैसे मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो इसके पश्चात भगवान अपना विभूति का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान सर्वत्र ही विराजमान है। भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं क्या, कैसे कि पानी का स्वाद रस कौन है? भगवान। सूरज का किरण कौन है? मनुष्य में तेज कौन है? भगवान। ये सारे भगवान का ही प्रकाश है। इस रूप से भगवान का, भगवान को जानना चाहिए। बल्कि ऐसे कुछ आदमी हैं जो भगवान को जानने का कभी भी नहीं जान सकता है, न तो कभी भगवान का शरण लेते हैं। वो कौन है? जिसे दुष्कृतिनो कहा गया है, पापी लोग। वो पापी लोग कैसे होता है? मूढ़ा, जो एकदम मूढ़क है। न मान दुष्कृतिन मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधम, जो नराधम मनुष्य से अधम है, देखने में लगता है कि मनुष्य है, नर है, बल्कि असल में और कुछ है। वो मनुष्य नहीं है, नराधम। माया या अपरहित ज्ञान, जिनकी ज्ञान माया हर लिया है। और आसुरिंग भाव माश्रिता, जो आसुरी भाव वाले हैं। ये चार प्रकार व्यक्ति कभी भगवान का, भगवान के शरण नहीं लेते। और चार प्रकार व्यक्ति भगवान को भजन करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं। वो चार प्रकार व्यक्ति कौन है? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञान। और तो ऐसे वर्णन करने के पश्चात भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्म के बाद कोई व्यक्ति हमें जान सकते हैं। कैसे? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री वासुदेव ही सर्वमिति, मतलब सब कुछ के आधार है, सारे कारणों का कारण है। सर्व कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो कौन सा व्यक्ति भगवान को इस रूप से जान सकते हैं, जो बहुत बहु बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्म जन्मांतर के पश्चात जो ज्ञानवान है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुए हैं, वही भगवान को सारे कारणों का कारण के रूप में जन्म जन्मांतर के पश्चात जान सकते हैं। बल्कि जिसका ज्ञान चुरा गया है कामोष्ट, किसके द्वारा? काम के द्वारा। काम का मतलब क्या है? काम की मतलब होता है भौतिक जगत को स्वयं भोग करने का इच्छा या चेष्टा। तो काम के द्वारा जिसका चेतना ज्ञान जिसका हरण कर लिया है, वो क्या करते हैं? तंग तंग नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया, अपने प्रकृति के अनुसार वे कार्य करते हैं। इसका जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो देवता के शरण में आते हैं। देवता को पूजा कौन करते हैं? जिसका ज्ञान, मतलब भगवत तत्व ज्ञान जिसका हरण हो गया, हर लिया माया ने, वो भगवान को सही रूप से नहीं जानते हैं और इसलिए वो देव देवी का पूजा करते हैं। और देवी देवी के पूजा कैसे होता है? जो व्यक्ति देव देवी का पूजा करना चाहते हैं तो भगवान उसको अपना इच्छा के अनुसार, अपना वृत्ति, अपना मनोभाव के अनुसार उसको देव देवी को पूजा करने को देते हैं। और देव देवी का पूजा क्यों होता है? देव देवी का पूजा शास्त्र के द्वारा, शास्त्र में देव देवी की पूजा का भी निर्देश है, वर्णन है, तरीका है। बल्कि वो देव देवी की पूजा का जो मंत्र है, वो कैसे मंत्र होता है? हमको ये दो, हमको वो दो, कुछ चाहने के लिए देव देवी की पूजा होता है। बल्कि भगवान का पूजन, भगवान का भक्ति कुछ कामना के द्वारा प्रभावित होकर नहीं। जो भगवान के भक्त हैं वो कभी कुछ मांगते नहीं है और प्राप्ति के लिए भगवान को पूजा नहीं करते। तो समझे, कौन भगवान, जो भगवान को जानता है वो क्या करेंगे? जो भगवान को सही रूप से जानते हैं वो लोग क्या करेंगे? भगवान का भक्त बनेंगे। और जो भगवान को नहीं जानता है, मतलब कामना के द्वारा जिसकी बुद्धि खत्म हो गए हैं, वो लोग ही केवल भौतिक जगत को भोग करने के लिए भगवान देवताओं के पास जाते हैं और पूजा करते हैं। और पूजा करने का तरीका कैसे है? हमें धन अंग दे ही, हमको धन दो, जनंग देही, जशो देही, ऋषो जयी, ये है देव देवी का पूजा का तरीका। ना तो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने का उद्देश्य होता है कुछ चाहना है थोड़ा, हे इंद्रदेव, हे वरुण देव, हे सूर्य देव, कृपा करके मुझे थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिए। और वो लोग देवताओं ने देते हैं, बल्कि जो देते हैं वो भी भगवान का ही अनुमति क्रम से देते हैं। देव देवी को खुद देने का कुछ ये नहीं है, योग्यता नहीं है। देव देवियों ने खुद कुछ देने का लायक नहीं है। देव देवियों ने कैसे देते हैं? जैसे तुम कोई अगर बैंक में जाते हैं रुपया लेने के लिए, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन किसके पास देते हैं? बैंक मैनेजर के पास देते हैं। क्या और बैंक मैनेजर के खुद रुपया दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं या वैसे दे सकते हैं? नहीं। जब चेयरमैन या डायरेक्टर जब सैंक्शन करेंगे ठीक है दे दो, तभी केवल दे सकेंगे। वैसे ही देवदेवियों ने खुद कुछ नहीं दे सकते, भगवान की अनुमति के अनुसार ही वो केवल दे सकते। मतलब देवदेवी ने भगवान के पास पूछते हैं, फलाना आदमी एक मकान मांग रहा है, मैं क्या करूं? और भगवान बोलते हैं ठीक है दे दो। और कोई आके बोलते हैं ये गाड़ी मांगता है, और कोई आके बोलते हैं ये रुपया मांगता है। मतलब भगवान देखते हैं उसका पुण्य कितना है, वो ठीक है उसके पुण्य के अनुसार तुम पुण्य माइनस कर दो और गाड़ी दे दो। जो कुछ मिलता है उस पुण्य के कारण से मिलता है। तो जो बुद्धिमान है वो देवताओं के पास जाएंगे। अगर भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का अवसर है, संभावना है, तो देवदेवियों के पास जाने का क्या जरूरत है? क्योंकि देवदेवियों ने तो भगवान की पूजा कर रही है। तो हम अगर भगवान को शरण ले लिया तो देवदेवियों ने खुद ही हमको देते रहेंगे। बताइए क्या जरूरत है आप? देवदेवियों ने बोलेंगे मुझे आपको सेवा करने का कुछ मौका तो दे दीजिए, क्योंकि आप भगवान का सेवा कर रहे हैं डायरेक्ट, वो सेवा तो हमको नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट भगवान का सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप कृपा करके कुछ हमसे थोड़ा कुछ लीजिए, ताकि उसके कारण भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मूर्ख हैं वो देव देवियों को पूजा करते। कामोस्तोस्तोई ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता तं तं नियममस्थाय प्रकृत्या नियतस्या। बल्कि उसके बाद भगवान कह रहे हैं अंतमंतु फलंतेषा, देवदेवियों के पास जांचना करके जो मिलता है उसका फल अंतोबत नाशवान है। अंतोबत्तु फलंतेषा तद्भवती अल्पमेधशाम देवान देव जजो जानती मद्भक्ता जानती माम। जो देवता को पूजा करते हैं वो देवता के पास जाएंगे, जो मेरा भक्ति करते हैं वो मेरे पास आएंगे। तो अगर ये करना है, शरण लेना है, तो किसका शरण लेना है? भगवान का ही शरण लेना है। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि सबके लिए भगवान प्रकट नहीं होते, बल्कि जो भक्ति करते हैं उनके पास ही भगवान अपने आप को प्रकाश करते हैं। किसके पास भगवान प्रकट होते हैं, किसके पास भगवान अपने कौन भगवान को जान सकता है, ये एक बहुत सुंदर श्लोक है। येषां तु अंतगत पापं जनानां पुण्य कर्मानां ते दंध मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। भगवान को भजन कौन करते हैं? येषां तु अंतगतं पापं, जिसका पाप खत्म हो गया है, जिसका सारे पाप का नाश हो गए हैं, और जो पुण्यवान है जनानां पुण्य कर्मणां, वो व्यक्ति द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होकर भजन्ते मां दृढ़व्रता, मेरा निष्ठापूर्वक दृढ़व्रता निष्ठापूर्वक मेरा भजन करते, मेरा भक्ति करते। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इन जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के दंड से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते। वो निष्ठापूर्वक दृढ़ता के साथ भगवान को सेवा करते। तो आप लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान के भजन कर रहे हैं, हां या नहीं? कौन कौन हां? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस श्लोक के अनुसार क्या हुआ? इसका मतलब कि आप सब पूर्व जन्म में इतने सारे पुण्य किए हैं, और आपका सारे पाप एकदम खत्म हो चुका है, इसलिए आप भगवान को भक्ति करने का आपको अवसर मिला है। चाहे आप इसको स्वीकार करें या नहीं, बल्कि भगवान भगवत गीता में वैसे ही बता रहे हैं। और जो जड़ा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। ये वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। और जो भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं, वो निश्चय ही मृत्यु के समय भगवान को याद करके भगवान को कृपा प्राप्त होगी। तो सप्तम अध्याय का विषय आप जान लिया है, हां या नहीं? तो सात सप्तम अध्याय पाठ करने से क्या हुआ होता है, उसको वो हम जान लिया, सप्तम अध्याय पाठ किया और सप्तम अध्याय का विषय क्या है वो भी जान लिया। तो गीता पाठ से कुछ लाभ हो रहा है, ये प्रोग्राम होना चाहिए, हर शाम को होना चाहिए। और तुम लोग आते रहोगे ना, क्या जब मैं चला जाऊंगा तुम लोग भी चले जाओगे? शाम को मंदिर में आके भगवद गीता पाठ करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे।